जय राधा रमण राधा रमण राधे। जय जय राधा रमण राधा रमण राधे। तो छह गोस्वामी में से एक गोस्वामी का नाम था गोपाल भट्ट गोस्वामी। याद रहेगा आपको, जरूरी याद रखना। हाँ, मुझे पता है धूप है, कष्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी अपना मन जो है वो कृष्ण कथा पर फोकस रखना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी एक एकमेव गोस्वामी थे, साउथ इंडियन, और सबसे उम्र में छोटे थे सब गोस्वामी से। और बालक रूप में उनका संपर्क चैतन्य महाप्रभु का हुआ था, जब वो अपने माता पिता के घर में साउथ इंडिया में श्रीरंगम में थे। उस घर में भी मैं गया हूँ और वहाँ पर मैंने निवास भी किया 4 दिन के लिए, जहाँ पर उनके माता पिता का घर था। चतुर्मास में चैतन्य महाप्रभु की उन्होंने 4 महीना सेवा किया बालक रूप में। फिर जब बड़े हो गए, माता पिता का देहांत हो गया, तो वृंदावन में आ गए और भगवान चैतन्य महाप्रभु की याद में रोते थे वो। तो चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को स्वप्न दिया, उनका विरह देखकर स्वप्न में आए। तब वो स्वयं जगन्नाथपुरी में थे, लेकिन वृंदावन में इनको स्वप्न दिया कि आप नेपाल में चले जाओ और नेपाल में मैं आपको दर्शन दूंगा। तो उस समय हवाई जहाज नहीं था, दिल्ली काठमांडू फ्लाइट से चल के गए, चल के कई महीने तक चलते रहे। और नेपाल में और भी आगे पोखरा नाम की जगह है, और उसके आगे 4 घंटे का सफर है कार का। वहाँ पर गंडकी नदी का निवास है, काली गंडकी बोलते हैं उसको, उसमें शालिग्राम रहते हैं। तो वो काली गंडकी के पास में दर्शन करने में गया था, अप्रैल में गया था। तो वहाँ पर वो चल के पहुँचे पहाड़ में, तो काली गंडकी में जब स्नान किया, आचमन किया, तो उनके कमंडल में कुछ शालिग्राम शिलाएं प्रवेश किए। तो उनको लगा कि एक्सीडेंट होगा ऐसे ही, तो छोड़ दिया, उसने वापस छोड़ दिया। दूसरी बार कमंडल भरने का प्रयास किया, वापस शालिग्राम शिला ने प्रवेश किया उसके अंदर, दोबारा पानी में उतार दिया। तीसरी बार जब दोबारा, तीन बार जब तीसरी बार कमंडल जल में डाला, तो 12 शिलाएं प्रवेश कर चुके उसके अंदर। उस समय आकाशवाणी हुई कि मैंने कहा था ना कि मैं आपको नेपाल में मिलूंगा, ये शालिग्राम शिला मैं ही हूँ, इसको वृंदावन ले जाना और सेवा करना। तो वो 12 शिलाएं जो है, आपने शालिग्राम दर्शन किया है कभी किसी ने? शालिग्राम शिलाएं बहुत काले रंग की, सुंदर, चमकदार, गोल मटोल, बहुत सुंदर दर्शन होता है उसका। उसको लोग चंदन से आंखें बनाते हैं, मुंह बनाते हैं, फिर चंदन चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तुलसी चढ़ाते हैं, गंगा जल से उसको, जमुना जल से स्नान करते हैं, ऐसे पूजा करते हैं उसकी। काफ़ी स्ट्रिक्ट पूजा है उसकी शालिग्राम की। शालिग्राम की पूजा में अगर आपने मिस्टेक किया तो अपने जीवन में बहुत संकट आएंगे आपको, इसलिए लोग शालिग्राम की पूजा स्वीकार करने के वाले बहुत सोचते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं, उनकी आज्ञा होगी तो ले लेते हैं। तो वो शालिग्राम शिला लेकर वो वृंदावन आए और चंदन, तुलसी और जमुना जल से उनकी सेवा करने लगे। एक दिन एक बड़ा व्यापारी आया, दानी था वो, उसने बहुत सारे अलंकार, मुरलियाँ, मुकुट, सब अस्त्र वस्त्र शस्त्र सब अलंकार सब लेके आया, और सभी गोस्वामियों को मंदिर मंदिर का, हम लोग ऐसे घूम रहे मंदिर में, सब लोग ऐसे एक एक करके करके सब गोस्वामियों को मिलके सबको भेंट देते गया वो, कि आपके ठाकुर जी के लिए, आपके विग्रह के लिए। सबने स्वीकार किया, अपने ठाकुर जी को अर्पण किया। जब इनके पास आए तो इन्होंने क्या बोला कि मेरे ठाकुर जी को तो अंग ही नहीं है, तो गोल मटोल बॉल जैसे हैं, ना उनको हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है, तो मैं तुम्हारे द्वारा जो अलंकार दिए कैसे पहनूं उनको मैं? तो उन्होंने कहा नहीं 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 मैंने तो आपके लाए हैं, आपको तो लेना ही पड़ेगा, मैं जो लाया हूँ वापस लेके नहीं जाऊँगा, आपके लिए लाया, आपको लेना ही पड़ेगा। तो ले लिया उन्होंने, देखा सुंदर, कितने कितने बाजू बंद है, सुंदर सुंदर शर्ट है, पैंट, धोती, कुर्ता, अलग अलग गले का हार है, नाक में बिंदी है, कान में कुंडल है, स्वर में मुकुट है, इतने सुंदर सुंदर विग्रह के, इतने इतने अच्छे अच्छे अलंकार है। देख के मन में इच्छा हुई, काश अगर मेरे ठाकुर जी के भी अंग होते, तो अंग तो नहीं है, छोड़ दिया बात को। यथावकाश नरसिंह जयंती आई, और नरसिंह जयंती में आप जानते ना, खंभे को तोड़कर भगवान आए थे, खंभे में से प्रहलाद ने इशारा किया, कहाँ है तुम्हारे भगवान, बताओ कहाँ है? बोले वो तो कण कण में समाये हुए। अरे कण कण, लेकिन कौन से कण में बताओ, एक खंभे में है क्या? तो बोले कि इस खंभे में भी है। देखो मैं खंभे को चकनाचूर करता हूं, अभी देखता हूं तुम्हारे भगवान कहां से आते। तो भगवान प्रहलाद ने इशारा किया, इसलिए तत्क्षण वो खंभे से प्रकट हो गए। ये सब लीला उन्होंने उस दिन पढ़ा भागवत से। हमारे संप्रदाय का रिवाज है, हमारे संप्रदाय में वो जो दिन कथा होती है, जिस दिन वो आता है समय, हम लोग वो कथा पढ़ते हैं भागवत से, कथा लेक्चर के रूप में करते हैं, उसका अभिषेक करते हैं भगवान का। तो उन्होंने भी भागवत से कथा पढ़ी सातवें स्कंद से, और उस दिन रात को उनके मन में विचार आया, अगर हमारे भगवान पहले किधर नहीं थे, प्रहलाद ने खाली इशारा किया तो खंभे से प्रकट हो गए तुरंत, तो वही भगवान मेरी शालिग्राम शिला से क्यों नहीं प्रकट हो सकते, चाहे तो हो सकते। ऐसा विचार करके उन्होंने सबका शयन कराया, भगवान को शयन कराया और सो गए वो। जब सुबह उठे तो उसमें से एक शिला जिसका नाम दामोदर शिला था, वो शिला का वस्त्र जो था ना वो ऐसा ऊपर आ गया था, तो उनको बड़ा आश्चर्य हो गया। वो शिला तो बॉल की तरह होती छोटी सी, वो तो वस्त्र ऐसे फ्लैट रहते हैं, सभी वस्त्र फ्लैट हैं, एक वस्त्र ऐसा खड़ा है, कोई ऐसे दंडी रखा हुआ ऐसे खड़ा रहता है। तुरंत जमुना जी में स्नान किया, शुद्ध हो गए, और तुरंत जाके उनका रुमाल निकाल के देखा तो एक शिला में से ये सुंदर विग्रह उत्पन्न हुए जो आपके सामने देखो। शालिग्राम जैसे ही बॉडी है उनकी, काले काले रंग की लेकिन चमकदार, इतनी लुभावनी। और आप अगले चार उंगली ऐसे कैसे रखना, ऐसे रखना चार उंगली, आप चार रखना उसके ऊपर, ऐसे इधर रखना, आगे आगे रखना, ऐसे ऐसे मेरी चार उंगली ऐसे, कितने हो गए उंगलियाँ, 12 उंगली, इतने ही साइज़ के वो, ऐसे ऐसी उनकी हाइट है ना, चार 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 12 उंगली की साइज़ है। ये फोटो में बड़ा है बहुत, इतनी सी मूर्ति है, उसकी सुंदर इतने अंग है, इतना सुंदर चेहरा, इतनी सुंदर आंखें, इतने होठ सुंदर हैं उनके, हाथ पैर जिस तरह से खड़े हैं, इतने मनमोहक तरीके से खड़े हैं, इतनी सुंदर विग्रह जो है वो शिला पीछे है और शिला के आगे से वो ऐसे प्रकट हो गए। वो देखकर गोपाल भट्ट गोस्वामी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, सबसे उम्र में छोटे थे, सब बड़े गोस्वामी को उन्होंने बुलाया, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी, सबको बुलाया उन्होंने, महाराज जी सब लोग आई है, सब लोग देखिए देखिए चमत्कार, देखिए क्या हो गया है। सब लोग इस मंदिर में इकट्ठा हो गए, छह गोस्वामी इकट्ठा हो गए, पांचों, उन्होंने दर्शन किया। तो उस समय रूप गोस्वामी ने कहा कि तुम्हारे जो विग्रह हैं इसमें मदन मोहन जी के पैर हैं, गोपीनाथ का अंग है, और सॉरी गोविंद जी का वक्षस्थल है, और गोपीनाथ जी का मुख कमल, तीनों विराजमान एक ही मंदिर एक ही मूर्ति में है। इस एक मूर्ति को देखकर आपको मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी का दर्शन एक में ही हो रहा है। तो उन्होंने उनको नामकरण किया रूप गोस्वामी ने, कि आपका विग्रह का नाम है राधा रमण, जो राधा रानी में हमेशा रमण करते हैं। इस तरह से ये जो विग्रह खड़े हैं, इसके पीछे ही शालिग्राम शिला है, पैर के पास में ऐसी है, वहां से वो प्रकट हो गए हैं। और आज भी वृंदावन में सबसे अधिक सुंदर, सबसे छोटे लुभावने, छोटे छोटे मुरली, छोटे छोटे अलंकार, छोटे छोटे मुकुट, छोटे छोटे वस्त्र पहने हुए, छोटे छोटे घुंघरू पहने हुए, माला नेकलेस पहने हुए, बहुत सुंदर, देखो इतने सुंदर विग्रह हैं ये। इसको आप ऐसे गोद में लेके घूम सकते हो, इतने छोटे से, फोटो भी कम से कम चार गुना बड़ा फोटोग्राफ है। हाँ, इसको आप ठीक से निहारिए, बड़े प्रेम से निहारिए, इनके चरणों के देखिए, इनकी वो जो पैंट जैसा पहना हुआ है उसको देखिए, फिर उनके पेट को देखिए, उनके हाथ को देखिए, उनकी मुरली को देखिए, उनके चेहरे को देखिए, उनकी आँखों को देखिए, उनके मुकुट को देखिए, उनके श्रृंगार को देखिए, उनके आसन को देखिए। और यहाँ पर जो है ना, ये एक आसन वो राधा रानी का सिंबॉलिक आसन है, राधा रानी का प्रतीकात्मक आसन है वो। राधा रानी यहाँ पर है, देखो मुकुट पहना ना चंद्रिका, उनका मुकुट डिफरेंट टाइप का है, इनका मुकुट जो है ना उसको कहते हैं चंद्रिका, बोलते हैं चंद्रिका। सब लोग ध्यान से देखना, केवल मत्था टेक कर लाभ नहीं होता है, ठाकुर जी को निहारना चाहिए ठीक से, एक एक अंग को देखना चाहिए। जैसे माता अपनी बालक को रोज देखती है, लेकिन इस रोज देखने के बाद भी फिर भी निहारती रहती है उसको, जब वो दूध पी रहा था भी उसको मुख को देखती रहती है, उसके नाक को देखती रहती है, उसके आंखों को देखती रहती है, हाथ फिरती रहती है उसके बालों के ऊपर से। जब प्रेम होता है ना, तो हम लोग बहुत प्रेम से उनको निहारते हैं, हर एक अंग को निहारते हैं। लेकिन निहारने लायक जीवन में केवल एक ही वस्तु है, वो है भगवान। बाकी सब जिसको भी आप देखेंगे कल बदली हो जाएगा वो, है ना। आज आपको देख रहे हैं 2015 में, तो 25 में मिलेंगे तो क्या होगा, सब लोग ऐसे बड़े बड़े शरीर वाले, एक आध दो बच्चे हाथ में, हाँ अभी इतने बाल है तो इतने से कम हो गए होंगे, और ऐसे यू नो डिफरेंट डिफरेंट, रामचरण देखो अभी थोड़े सफ़ेद थोड़े काले, ऐसे अलग अलग दृश्य मिलेगा हमको। मिलेंगे तो हम भी ऐसे अभी काटी लेके ऐसे धीरे धीरे आ रहे हैं, आप बोले महाराज चलो जल्दी जल्दी, बोले नहीं बुढ़ा हो गया, हंसते हंसते आ रहा हूँ। तो हमको निहारेंगे तो चलेगा ठीक है, लेकिन कल निहारेंगे तो डिफरेंट पिक्चर मिलेगा आपको। इनको निहारेंगे तो हमेशा वैसे मिलेंगे, नव नवायमान नव यौवन मान, हमेशा सुंदर, नेत्रों को आनंद देने वाले, खुश करने वाले, है ना। राधा रमन जी सबसे सुंदर, ऐसे कहा गया कि आपको वृंदावन में बहुत कम समय है, आधा घंटे का ही समय है, कहीं जाना है आपको इम्पोर्टेंट, तो आपको इनके मंदिर में जाना चाहिए, क्योंकि इस इनके चरणों में मदन मोहन जी के चरण हैं, इनके वक्षस्थल में गोविंद जी के वक्षस्थल है, इनका मुख कमल गोपीनाथ जी का है, तीनों वगैरह के दर्शन एक ही मंदिर में होते हैं, बहुत सुंदर मंदिर है। और इसी मंदिर के प्रांगण में पीछे इनका प्राकट्य हुआ था, ये प्रकट हुए थे, इसके पीछे एक जगह है उसको कहते हैं राधा रमन प्राकट्य स्थली, गोपाल भट्ट वहाँ निवास करते थे, झोपड़ी में बैठकर भजन किया करते थे। फिर किसी भक्त ने आकर इतना मंदिर बना बड़ा बनाया और गुरु महाराज ने उसको यहाँ पर भी प्रकट किया। श्री श्री राधा रमन देव भगवान की जय। हमारे गुरु जी का एक किताब है अनोखा सफ़र जर्नी होम, उसके अंदर इनका भी इतिहास दिया गया है। इन्हीं की कृपा से हमारे गुरु जी आज भी इंडिया में हैं, क्योंकि उनको पासपोर्ट इतना वीज़ा उनका इतना ओवरड्यू हो गया था कि उनको रेस्ट्रिकेट करने वाले थे, बैन करने वाले थे ब्लैक लिस्ट के अंदर। तो उस दिन 5 बजे मंगलारती में महाराज हमारे यहाँ पर आए, उन्होंने प्रार्थना किया कि राधा रमन जी अगर आप चाहते हो तो मुझे वृंदावन में रखो, नहीं तो आपकी मर्जी। तो लंबी कहानी आप उस किताब में पढ़ना, बहुत सुंदर रोचक कहानी है कि कैसे लीला रचा के राधा रमन देव ने फिर महाराज का वीसा जो था ओवरड्यू उसको सैंक्शन कर दिया पूरा, और महाराज जी फिर वापस गए और दोबारा वापस इंडिया में आए। अगर वो चमत्कार नहीं होता तो परमानेंटली ब्लैकलिस्ट होके इंडिया से बाहर रहते, कभी इंडिया में नहीं आ पाते। तो हम भी राधा रमन के बहुत ऋणी हैं, क्योंकि इन्होंने वो चमत्कार किया, आप किताब में पढ़कर समझ सकते हैं कि इन्होंने चमत्कार किया और महाराज जी को बचाया। श्री राधा रमन देव दयालु भगवान की जय हो।